सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिस दौर में आपने ज़िंदगी
जी
बसर की, आपने वाकई करबला को देखा और फिर जो है वो इबादत के ज़रिए लोगों
जी
को
जी
रहनुमाई करने की वो की सही पे सज्जा दिया। एक बहुत ही अजीम मजमुआ है उन दुआओं का जो वाकई जगा देने वाली दुआएं हैं। हम आपकी सीरत पर हम रोशनी डालना चाह
जी
रहे हैं।
हम अपनी बात का आगाज़ इस जगह से करना चाहेंगे कि सबसे पहले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन को ये लकब कैसे मिले। जब हम तारीख़ी किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद और इनके वालिद के बाद अगर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कोई इबादत करने वाली शख्सियत या सजदा रेज़ रहने वाली कोई शख्सियत मौजूद है तो वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन हैं। और इसके अलावा हमें तारीख़ी कुतब में ज़ुल सनाफात का लकब भी आपसे मरबूत मिलता है, जिसके मानी ये हैं कि आप अलैहिस्सलाम इस कदर ज़्यादा सिजदा किया करते थे कि आपकी पेशानी पर गट्ठे बन गए थे, जिस वजह से आपको ज़ुल सनाफात के लकब से भी याद किया जाता है। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत के हवाले में तारीख़ के अंदर इख्तलाफ़ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक जो है वो 5 शाबान और बाज़ के नज़दीक नीमाए जमादियुस सानी और बाज़ के नज़दीक नीमाए जमादियुल उला शुमार किया जाता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत से 2 साल पहले हुई, यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 9 हुकमरानों का दौरे हुकूमत गुजारा है, जिनमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम, माविया, यजीद और इसके बाद माविया इब्ने यजीद और मरवान इब्ने हकम और अब्दुल मालिक बिन मरवान और वलीद बिन अब्दुल मालिक शामिल हैं। इनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अरसाई ज़िंदगी इंतहाई सख्त था, क्योंकि हर तरफ से आपके ऊपर सख्तियाँ थीं। ये ऐसा दौर था कि जिस दौर के अंदर लोग जो हैं फरामीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम इलाहिया को फरामोश कर चुके थे, क्योंकि करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिस रविश को इख्तियार किया पूरी तारीख इसकी गवाही देती है और इसको सराहती है, क्योंकि इतनी सख्तियों के बावजूद जिस आयाम में, जिन दिनों में हज़रत सैयदुल साजिदीन ने इबादत का सिलसिला शुरू किया, दुआओं का सिलसिला शुरू किया, ये दुआएं आम दुआएं नहीं हैं। इसके अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को अहकाम इलाहिया बताए हैं और इसके अलावा मसाइल का हल बताया है, एक दूसरे के साथ बात करने के आदाब और रसूमात बताई हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस सख्ती वाले अय्याम में कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी तबलीग का आगाज़ किया और सरनामा जो है वो अंजाम दिया।
जिस दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़िंदगी बसर की, इंतहाई हम कह सकते हैं खुदा वाक़े करबला के
जी
बाद बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल था।
जी बिल्कुल
बेहतरीन तरीक़ा ये था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वाकई यानी उन्होंने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़हरा के बेटे होने का सबूत भी अपना
जी
पेश कर चुके थे वो दरबार शाम में।
जी
तो इसके हवाले से मज़ीद अगर रोशनी डालें।
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का अरसा जो है वो सन 61 हिजरी से शुरू होता है, जो सन 95 हिजरी तक जाता है। इसमें हम देखते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब असारत में हैं, आपके हाथों में जो है वो बेड़ियां हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम देखते हैं कि हज़रत सैयद सज्जाद जो हैं सबसे पहले कूफा के दरबार में किस तरह से खुतबा देते हैं और किन हालात के अंदर आप खुतबा देते हैं। ये सिर्फ जो मैं कहूँगा कि ये ज़ेब देता है फ़कत फ़रज़ंदे ज़हरा को, कि वही सिर्फ़ ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि दरबार शाह में हज़रत सैयदुस्सज्जाद ने किस तरह और कितनी जुरतमंदाना अंदाज में खुतबा दिया। और सबसे पहले जब आपने खुतबा देना शुरू किया तो कहा कि जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे पहचान ले। आपने एक लंबा तुलानी खुतबा पढ़ा जिसमें आपने कहा कि मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं बतहा का बेटा हूँ, यानी पूरा तारुफ सरज़मीन मक्का का करवाया, फिर शजराए रिसालत का करवाया, फिर उसके बाद इमामत का तारुफ करवाया और उस घराने का तारुफ करवाया जिसका तारुफ खुद खुदा ने قرآن مجید کی مختلف آیات میں اشاروں کی صورت میں کروایا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت جو خود شخصیت ہے وہ انتہائی رحم دل شخصیت ہے، مہربان شخصیت ہے، آپ انتہائی بردبار حلیم شخصیت کے مالک تھے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یزید مکے پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی حضرت سید ساجدین کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ امان میں رہے گا، اور اس وقت بھی حضرت سید الساجدین نے ہر ایک کے لیے امان دی. اس میں کوئی آپ نے شرط نہیں رکھی تھی کہ اہل بیت کا ماننے والا ہو، ہمیں ماننے والا ہو، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تھی. صرف یہی جو صرف خدا پر ایمان رکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، آپ نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی. حتیٰ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو بھی آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور باقاعدہ طور پر اسے شربت پیش کیا. جب اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں، تو حضرت سید السجاد علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے بھائی کے قاتل ہو. یعنی یہ ایک انتہائی بڑے دل کی بات ہے، رحیم دل کی بات ہے، بخشش کی بات ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو اس طرح سے شربت کو پیش کرے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام کی جو شادیاں ہیں وہ تقریباً تاریخ میں جو رقم کی گئی ہیں، آپ کی شادی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ چند اور خواتین کے نام ذکر ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت امام باقر علیہ السلام، زید شہید، اور اس کے علاوہ باقی ایک لمبی فہرست ہے جس میں عبد الرحمن اور یہ سارے عبداللہ باہر وغیرہ آتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں جن کے نام ختیجہ، فاطمہ، علیہ اور ام کلثوم ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرح، یعنی یوں کہیں کہ براہ راست کنفرنٹیشن کا طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا؟
دیکھیں، ہر امام کا دور امامت جو ہے اس کے تقاضے جدا جدا ہوتے ہیں. دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خاموشی کا عرصہ اختیار کیا، مگر کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے کسی مقام پر بھی اس کی تائید نہیں کی، نہ یزید کی نہ اس کے بیٹے معاویہ کی تائید کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر جناب مختار صفی کا قیام آتا ہے، اس کے اندر بھی امام زین العابدین علیہ السلام بلا فاصلہ شریک نہیں ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے بلا فاصلہ کسی کا مسلسل یا ڈائریکٹ ریلیشن ہونا، اس طرح کی ہمیں کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جو طریقہ تبلیغ اپنایا تھا یہ بہت اہم ہے، کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو احکام الہی کی طرف دعوت دی، ان احکام الہی کی طرف دعوت دی جن کو لوگ بھول چکے تھے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی تھی، جس کا پرچار کیا تھا، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر جن احکامات کو اتارا تھا اور لوگ ان کو فراموش کر چکے تھے کیونکہ ان کے اوپر زنگ لگ چکے تھے، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے، کیونکہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان کے ہر قسم کے زنگ کو اور ہر قسم کی جو بھی آلودگی ہوتی ہے، پلیدی ہوتی ہے، دعا اس کو نکھار دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے جس طرح سے دعائیں کی ہیں وہ یقیناً ہمیں سکھلانے کے لیے کی ہیں کہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، خدا کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں صحیفہ سجادیہ تعلیم دیتی ہیں.
پیغام آیا ہے، البتہ کافی لوگوں کا نام ہے، اسرار حسین، سعدیہ مسرور، فاطمہ بتول، محمد حسن، محمد حسین صاحب ہری پور پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اساتذہ انبیاء کے پیشے کو انجام دیتے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ اور بتانے یا پڑھانے سے پہلے اچھے اخلاق سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے. انتہائی اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور میرے خیال میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جیسا خود خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی پہلے تزکیہ نفس کی بات ہوئی ہے، پھر تعلیم کی بات ہوئی ہے. اس کا بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز ہم لوگ کو ملتی ہے.
سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیا گیا ہے. और देखें कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कि अगर हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ये जो 54 दवाओं का सिलसिला है, अगर हम इनको देखें तो इसमें आपने हमसाए के हकूक़ के बारे में, वालदेन के हकूक़ के बारे में, औलाद के हकूक़ के बारे में, और शोहर के हकूक़ के बारे में, और उसकी बीवी के हकूक़ के बारे में, और इसके अलावा मुआशरे के हर तबके के हकूक़ को फ़राइज़ की बात की है, और इसके अलावा हज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, वो मसाइल जिनको लोग भूल चुके थे, वो इखलाक जिसको लोग फरामोश कर चुके थे, लोगों के दरमियान उस दौर में फ़कत कत्लो गारत का बाज़ार गर्म था, उस दौर के अंदर हज़रत सैयदुस्साजदीन ने लोगों को अदबो इखलाक, अच्छे तरीके से बात करना, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने के तरीके, एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करने के तरीके, वालदेन के साथ अच्छे इखलाक, और इसके अलावा आपने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी अपने खुदा के लिए वक्फ करनी चाहिए, और यकीनन वो दुआएं हमारे लिए एक मशाले राह हैं, उनको हमें हकीकी माना में पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए कि कुतबे तारीखी के अलावा उलमाए तशय्यो ने उसको ज़बूर आले मोहम्मद का नाम दिया है, सहीफ़ा सजादिया को, यानी इतना बड़ा लकब देना आम या मामूली सी बात नहीं है। फ़कत ज़रूरत यह है कि हम फ़कत आइमा की तालीमात को सुनने की हद तक महदूद ना रहें, बल्कि पढ़ने के बाद उनको अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करने की भी हमें ज़रूरत है। आज हमें अपने इखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, आज हमें अपने वालदेन के साथ अपनी किरदार और उनके साथ गुफ्तगू और उनके साथ मेलो जोल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, आज हमें भाई बहन के रिश्ते को बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें सैयदुस्साजदीन की ज़िंदगी में मिलती है, किस तरह से उन्होंने उस बहन का ख्याल रखा जो करबला, जिनका भाई करबला के मैदान में शहीद हो गया था, और किस तरह से आप उनको कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर मदीने में लेके आए, और मदीने के बाद किस तरह से उनकी कफालत की और उनकी सरबराही की, उनकी नगरानी की, यानी ये सारी चीज़ें हमें एक मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं, और इनको समझने की भी ज़रूरत है और इन पर अमल करने की भी ज़रूरत है। आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम हर बात हमारी लकलकाई ज़ुबानी तक महदूद है, हम जब अमली तौर पर इनको करने की तरफ आए तो हमें कोई दिखाई नहीं देता, यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ, आज दीन के नाम पर मरने के लिए हर कोई तैयार है, दीन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर दीन को अपने ऊपर नाफिज करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
बेशक, बिल्कुल ऐसे ही,
यानी इन तालीमात को अपने ऊपर हमें नाफिज करना है, ताकि हमारी हुस्न रफ्तार, हमारा उठना बैठना, हमारा गुफ्तगू करना, ये लोगों के लिए एक मशाले राह हो, लोग आपको देखकर ये कहें कि ये आले मोहम्मद का चाहने वाला चाह रहा है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तदाई दौरे हुकूमत में या अपने दौरे नबूवत में इस चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई थी कि अगर आपको कोई देखे, कोई गैर मुस्लिम, तो वो कहे कि अगर मुसलमान ऐसे हैं तो फिर मुझे मुसलमान ही हो जाना चाहिए।